पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सा च मे न प्रणश्यति सर्वत्र यो जो माम मुझको पश्यति देखता है सर्वत्र सभी जगह सर्वम प्रत्येक वस्तु को च तथा मयि मुझ में पश्यति देखता है तस्य उसके लिए अहम मैं ना नहीं प्रणश्यामि अदृश्य होता हूं सह वो च भी मैं मेरे लिए ना नहीं प्रणश्यति अदृश्य होता है उसके अनुवाद जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूं और ना वो मेरे लिए अदृश्य होता है आप भी बोलिए जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है उसके लिए ना तो मैं कभी अदृश्य होता हूं ना वो मेरे लिए अदृश्य होता है तात्पर्य कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भगवान कृष्ण को सर्वत्र देखता है और सारी वस्तुओं को कृष्ण में देखता है वैसा व्यक्ति भले ही प्रकृति की पृथक पृथक अभिव्यक्तियों को देखता प्रतीत होता हो किंतु वो प्रत्येक दशा में इस कृष्ण भावनामृत से अवगत रहता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की सही शक्ति की अभिव्यक्ति है कृष्ण भावनामृत का मूल सिद्धांत ही ये है कि कृष्ण के बिना कोई अस्तित्व नहीं है और कृष्ण ही सर्वेश्वर है कृष्ण भावनामृत कृष्ण प्रेम का विकास है ऐसी स्थिति जो भौतिक मोक्ष से भी परे है। आत्म साक्षात्कार के ऊपर कृष्ण भावना मृत की उस अवस्था में भक्त कृष्ण से इस अर्थ में एक रूप हो जाता है कि उसके लिए कृष्ण ही सब कुछ हो जाता है और भक्त प्रेममय कृष्ण से पूरित हो उठता है। तब भगवान तथा भक्त के बीच अंतरंग संबंध स्थापित हो जाता है। उस अवस्था में जीव को विनष्ट नहीं किया जा सकता और न भगवान भक्त की दृष्टि से ओझल होते हैं। कृष्ण में तदात्म होना आध्यात्मिक लय आत्मविनाश है। भक्त कभी भी ऐसी विपदा नहीं उठाता। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, प्रेमांजन छुड़ित भक्ति विलोचनेना संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यं श्याम सुंदरम अचिंत गुणस्वरूपम गोविंदमादिपुरुषम तमहं भजामि। मैं आदि भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, जिनका दर्शन भक्तगण प्रेम रूपी अंजन लगे नेत्रों से करते हैं। वे भक्त के हृदय में स्थित श्याम सुंदर रूप में देखे जाते हैं। इस अवस्था में न तो भगवान कृष्ण अपने भक्तों की दृष्टि से ओझल होते हैं और न भक्त ही उनके दृष्टि से ओझल हो पाते हैं। यही बात योगी के लिए भी सत्य है, क्योंकि वो अपने हृदय के भीतर परमात्मा रूप में भगवान का दर्शन करना चाहते हैं, दर्शन करता रहता है। ऐसे योगी शुद्ध भक्त बन जाता है और अपने अंदर भगवान को देखे बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। यो मांग पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। जो मुझे सर्वत्र देखता है और सब कुछ मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं कभी अदृश्य होता हूँ और न वो मेरे लिए अदृश्य होता है। तो ये भगवद गीता का षष्ठ अध्याय में योग या अष्टांग योग के बारे में विश्लेषण किया गया है। योगी अपना हृदय के हृदय अपना हृदय में विराजमान भगवान को दर्शन करते हैं। ये है योग का सिद्धि। वैसे योगी देखते हैं कि सब कुछ भगवान के साथ संपर्कित है और उस दर्शन के कारण योगी सर्वत्र ही भगवान को दर्शन करता है और सब कुछ में भी भगवान को दर्शन करते हैं। चैतन्य चरितामृत में इस विषय में कहा गया है, स्थावर जंगम देखे ना देखे तार मूर्ति सर्वत्र स्फुरय तार इष्ट देव स्फूर्ति। स्थावर शब्द का अर्थ होता है जो स्थिर है, जो एक स्थान में रहता है, और जंगम शब्द का अर्थ है जो गतिशील है। तो ऐसे कोई वस्तु है स्थावर या स्थिर और कोई वस्तु है जंगम जो गतिशील है, जो चलता फिरता है। इस भौतिक जगत के हर वस्तु या तो स्थावर है नहीं तो जंगम है। तो यहां इस श्लोक में वर्णन हुआ है कि जो भगवान का शुद्ध भक्त है वो बाहर की वस्तु या स्थावर हो या यंगम हो, हर वस्तु में ही उनका इष्ट देव मतलब अपना आराध्य देव भगवान को दर्शन करते हैं। कैसे दर्शन करते हैं, ये विचार दो रूप के हो सकता है। हर वस्तु में भगवान को ही परमात्मा के रूप में दर्शन करते हैं और हर वस्तु भगवान की सेवा के लायक है ये समझकर हर वस्तु को भगवान हर वस्तु में भगवान को दर्शन करते हैं और ऐसे समग्र स्थिति में उन्होंने भगवान को ही दर्शन करते हैं। तो ये जो दृष्टिकोण ये दर्शन भगवान को भक्तों के लिए ही संभव होता है। जो भगवान का भक्त नहीं है उसके लिए ये संभव कभी नहीं होता है। जैसे भगवान का जो भक्त है, कल हम ये विचार कर रहा था, भक्त कौन है, जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है। भक्त, भक्ति शब्द का अर्थ क्या होता है, भक्ति शब्द का साधारण अर्थ होता है प्रेम। ये प्रेम जब भगवान के प्रति अर्पण होता है तब उसको भक्ति कहा जाता है। ये है भक्ति का विशेषता। भक्ति शब्द का विशेषता ये है कि भगवान के प्रति जो प्रेम वो है भक्ति। उसको और भी सुदृढ़ रूप में और सरल रूप में उसको प्रेम भक्ति कहा जाता है। प्रेम भक्ति, भक्ति का अर्थ ही है प्रेम, परंतु ये भक्ति जो प्रेम है इसके ऊपर जोर देने के लिए इसको प्रेम भक्ति कहा जाता है। तो जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम का उत्पत्ति हुआ है, जिनके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम का विकास हुआ है, उनका दर्शन कैसा होता है, इसका वर्णन ब्रह्म संहिता में हुआ है, जिसका उल्लेख तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद किए हैं। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना, प्रेम रूप अंजन, प्रेमांजन, अंजन का, अंजन शब्द का अर्थ क्या है, काजल। आंखों में काजल लगाने से क्या होता है, आंखों में काजल लगाने से दृष्टि शक्ति वृद्धि होता है, हमारा दृष्टि शक्ति और भी स्वस्थ होते हैं, उसके लिए आंखों में काजल देते हैं। परंतु और एक तरीका का काजल का वर्णन यहां हुआ है, वो कैसी काजल, प्रेम रूप काजल। अंजन शब्द का अर्थ है काजल। तो प्रेम रूप अंजन के द्वारा जब हमारा आंखें रंजित होता है, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेना, वो जो दर्शन जो है, लोचन का मतलब क्या है, आंखें, आंख, तो विलोचन मतलब आंखों के द्वारा जो दर्शन होता है, प्रेमांजन छुरित, और वो कैसी दर्शन, भक्ति विलोचनेना, प्रेम रूप अंजन के द्वारा आंखें जब रंजित हो जाता है और तब जब हम भगवान को दर्शन करते हैं, भक्ति रूप दर्शन होता है, भक्ति विलोचने न, तब कैसा होता है, शांत। जो व्यक्ति का मनोभाव ऐसा हुआ है वो शांत है, वो संत है। संत का मतलब है क्या? संत का मतलब है साधु। साधु कौन है? जो भगवान का भक्त, वही साधु। महात्मानस तु मांग पार्थ दैविंग प्रकृतिम आश्रितः। भगवत गीता में भगवान महात्मा के बारे में कह रहे हैं। महात्मा कौन है? महात्मा और साधु शब्द का अर्थ एक ही है। साधु, हम कभी कभी बोलते साधु महात्मा, तो साधु और महात्मा एक ही अर्थ है। जिनका आत्मा महान है वो महात्मा, और साधु कौन है? साधु साधु वो है जिसका हृदय में कोई गंदगी नहीं है, जिसका दिल पूरा साफ हो गया है। सत, सत जो सत है वो है साधु। तो जिसका हृदय का गंदगी सारे, जिसका हृदय में कोई गंदगी नहीं है, उसका हृदय कैसा है, उसका दिल कैसा है? उसका दिल महात है, महान है, तो इसलिए वो उनको महात्मा कहा जाता है, साधु कहा जाता है, संत कहा जाता है। तो वैसे व्यक्ति को दर्शन कैसा होता है, क्या देखते हैं उन्होंने? उनने संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति, अपना हृदय में हर समय किसको दर्शन करते हैं? जंग श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम। भगवान का वो रूप जो श्याम सुंदर है और जो रूप अचिंत गुण का आधार है, अचिंत गुण स्वरूपम, अचिंत गुण का गुण स्वरूप है, ये है भगवान का श्याम सुंदर रूप की वर्णन। भगवान का रूप, भगवान कैसे देखने में कैसे होते हैं, भगवान देखने में कैसे हैं? श्याम सुंदर, जंग श्याम सुंदरम, और वो रूप कैसी है? अचिंत गुण स्वरूपम। अचिंत गुण को, जो जिस गुण को हम चिंता भी नहीं कर सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, उस गुणों की श्रोत्र है, आधार है। तो ऐसी दर्शन जब होता है तब कैसे उनका आंखों में दर्शन कैसा होता है? हर जगह भगवान को ही उन्होंने दर्शन करते हैं। जंग श्याम सुंदरम अचिंत गुण स्वरूपम, पहले तो अपना हृदय में दर्शन करते हैं भगवान को। केवल अपना हृदय में भगवान को दर्शन करते हैं? नहीं, जब उनको पता है कि हर व्यक्ति के हृदय में भगवान है, तो हर व्यक्ति के हृदय में भी उन्हें भगवान को दर्शन करते हैं वो, है ना? उनके लिए भगवान केवल मंदिर में ही नहीं है या गोलोक में ही नहीं है, उनके लिए भगवान हर जगह में है, हर वस्तु में है। हर वस्तु में उन्हें भगवान को देखते हैं, और भगवान में हर वस्तु का स्थिति दर्शन करते हैं। देखिए, भगवान के लिए कुछ हमसे कुछ मिलने का भगवान कोई जरूरत नहीं है, भगवान के लिए हमसे कुछ चाहना नहीं है, भगवान को पास सब कुछ है, और हमारे पास जो कुछ है वो क्या हमारा है? वो सब भगवान का है। तो दूसरे को चीज उनसे ना मांगे बिना लेने से क्या बोलता है उसको? चोरी कहा जाता है। तो जब हम भगवान को वस्तु लेते हैं, परंतु भगवान से अनुमोदन प्राप्त नहीं होते हैं, तो वो चोरी होता है ना? तो हमको क्या चोर बनना चाहिए या साधु बनना चाहिए? साधु। तो साधु कौन है? जिसको भगवान के प्रति जिनका प्यार हुआ है, मतलब जो सब कुछ भगवान को ही अर्पण करते हैं, उनको पता है कि सब कुछ भगवान का है और भगवान को ही उन्होंने सब कुछ अर्पण करते हैं। अगर हमको पता चला कि जो कोई वस्तु जो मेरा पास है वो मेरा नहीं है और किसी को है, और मैं अगर सत व्यक्ति हूं तो हमको क्या करना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए, ये वो वस्तु जिनके हैं उनके पास वापस देना चाहिए, है ना। तो आप बताइए, सारा इस दुनिया का हर वस्तु भगवान का है, तो हमको अब क्या करना चाहिए, हर वस्तु को भगवान के पास वापस लौटाना चाहिए। वो कैसे होता है कि भगवान को सेवा में हम उसको अर्पण करते हैं, और ऐसे ये भावना जो है ये बहुत उदार भावना है, बहुत ही महान भावना है। इस भावना को ग्रहण करना, इस भावना को पोषण करना बहुत ही जरूरत है, क्योंकि इस भावना पोषण करने से हमारा हृदय निर्मल हो जाता है और हम सही ढंग से भगवान को भक्त बन सकते हैं। तो ऐसे देखिए, एक मामूली विचार ये है, ये माइक्रोफोन है, ये माइक्रोफोन किसका है, हाँ किसका है, सब कुछ भगवान का है, तो माइक्रोफोन भी भगवान का ही होगा, है ना। तो ये माइक्रोफोन के द्वारा जब हम भगवान का, ये भगवान का है, तो इस माइक्रोफोन के द्वारा हमें क्या करना चाहिए, भगवान का गुण का वर्णन करना चाहिए, भगवान का महिमा का प्रचार करना चाहिए, भगवान का नाम का कीर्तन करना चाहिए। तो ये जय श्री राधा मदन मोहन की। तो आप देखिए, ऐसे हर वस्तु को हम भगवान को सेवा में जब लगाते हैं तो वो वस्तु भगवान का बन जाता है और हमारा कार्य भी सफल हो जाता है। ये टेबल किसका है, भगवान का है। तो इस टेबल के ऊपर अगर हम भगवान का भगवत गीता रख के भगवत गीता पाठ करते हैं तो ये टेबल को भगवान के लिए इस्तेमाल हो जाता है। तो ऐसे भगवान को सेवा में निवेदन करने से, भगवान का सेवा में अर्पण करने से हर वस्तु सार्थक हो जाता है। मतलब वो वस्तु का जो उद्देश्य है, अस्तित्व का जो उद्देश्य है, वो सफल हो जाता है। और जो हम जब ऐसे हर वस्तु को भगवान को सेवा में लगाते हैं तो हमारा दृष्टि भी, हमारा दर्शन भी परिवर्तन होता है, हमारा दर्शन का भी परिवर्तन होता है, क्योंकि तब हम हर वस्तु को भगवान के सेवा में लगाने की कोशिश करते हैं और भगवान को सेवा में लगाते हैं। ये है भक्ति। और ये जो प्रयोग जो है, मतलब भगवान को सेवा में सब कुछ जो लगाना, भगवान का महिमा कीर्तन करना, इसको संकीर्तन कहा जाता है। इस कलियुग का युग धर्म क्या है, संकीर्तन यज्ञ, यज्ञ संकीर्तन प्रायः। और संकीर्तन शब्द का अर्थ क्या है, बहुत सारे आदमी जब मिलकर भगवान का नाम कीर्तन करते हैं वो एक प्रकार का संकीर्तन होता है। और एक प्रकार का संकीर्तन है, वो क्या है, वो कैसा है, हर वस्तु को भगवान को सेवा में लगा के भगवान का महिमा कीर्तन करना। हाँ, जैसे देखिए, ये जो जो हॉल है ये क्या है, ये कम्युनिटी सेंटर था। तो कम्युनिटी सेंटर जब था ये भौतिक था, है ना, इसका दीवार, इसका जमीन, इसका छत, सब कुछ भौतिक वस्तु से बना हुआ है, तो उसके कारण ये भौतिक है और इसका प्रयोग भी भौतिक रूप से ही हो रहा था, है ना, जब कम्युनिटी सेंटर था। परंतु जब हम आकर यहां भगवान को मंदिर बनाया तो ये क्या भगवान का मंदिर बन गया, और भगवान का मंदिर क्या पंचभौतिक है या आध्यात्मिक है? हाँ, कौन बोला पंचभौतिक है? अच्छा, भगवान का आध्यात्मिक है। तो भगवान का सेवा में जब हम कुछ लगाते हैं तो वो भी आध्यात्मिक बन जाता है। तो ऐसे हमें भगवान को सेवा करना चाहिए। उससे क्या कुछ नुकसान होता है? जैसे आप देखिए, आप हर रोज बाजार से सब्जी वगैरह, अनाज वगैरह लाते हैं, लाके खाना पकाते हैं, है ना। तो ये खाना अगर आप भगवान के लिए पकाते हैं तो देखिए, ये सारे वस्तु तो भगवान का ही था। हाँ, सब्जी भी सब्जी किसका था? हाँ, भगवान का। अनाज, तेल, घी, मसाला सब भगवान का। हाँ, नमक, चीनी भगवान का। तो सब उसके द्वारा जब हम भगवान को, भगवान के भोग तैयार करके भगवान को अर्पण करते हैं तो भगवान उसको ग्रहण करते हैं या नहीं? ग्रहण करते हैं। और जब भगवान ग्रहण कर लेते हैं तब वो प्रसाद बन जाता है। और प्रसाद क्या भौतिक है या आध्यात्मिक है? आध्यात्मिक है। तो आध्यात्मिक प्रसाद खाने से क्या होता है? हम भी आध्यात्मिक बन जाते हैं। तो देखिए, खाना तो पकाना है ही, हर घर में खाना पकाते हैं हर रोज। परंतु उन्होंने वो सब क्या करते हैं? अपने लिए पकाते हैं। परंतु ये खाना अगर हम भगवान के लिए पकाते हैं तो, और भगवान को भोग लगाते हैं तो भगवान क्या सब कुछ खा बैठते हैं? भगवान खाते हैं, परंतु खाते समय भगवान सब कुछ वापस भी कर देते हैं। हाँ, जैसा खाना भगवान ऐसे हाथ से उठाया तो जो खाना उठाया वो पूरा हो जाता है। तो ऐसे इसका वर्णन बहुत सुंदर रूप से हुआ है गोपाल चंपू में, जीव गोस्वामी ने वर्णन किया है वहां गोवर्धन लीला का। अन्नकूट बनाया, एक पहाड़, एक पर्वत जैसा खाने का एक पहाड़ बनाया, पर्वत बनाया गया था, और वो खाना भगवान को, भगवान खुद गोवर्धन को निवेदन करने का निर्देश दिया, और गोवर्धन पर्वत वो खाना कैसे खाया वो भी एक विशाल रूप ग्रहण करके अपना हाथ से खाना उठाकर खा रहे थे। और भक्त लोग देख रहा था कि जो खाना जब उठाया पूरा, इतना बड़ा गोवर्धन का हाथ, देखिए गोवर्धन एक पर्वत है तो उसका हाथ कितना विशाल होगा। वो विशाल हाथ से जब खाना लेता था कितना खाना लेता होगा? बहुत। और खाना उठा के अपना मुंह में डालने का पहले ही जितना खाना उठाया था वो पूरा हो जा रहा था। तो उसके कारण भगवान जब खाते हैं, खाने के बाद ऐसा मालूम होता है कि वो जैसे कि हम निवेदन किया था वैसा ही है, परंतु असल में भगवान खाना खाते हैं। इसका बहुत सारे दृष्टांत है। तो भगवान ऐसे खाकर वापस कर देते हैं। तो हम अगर भगवान के लिए खाना पकाते हैं तो क्या हमारा कुछ कम होता है? आदमी सोच सकता है वो भगवान के लिए अगर खाना पका के भगवान को भोग दिया तो मेरे लिए कुछ नहीं रहेगा। नहीं, भगवान को सेवा में हम जो कुछ लगाते हैं वो अगर उसका जरूरत अगर हमको होता है तो भगवान वापस कर देते हैं। बोलते ठीक है, देखिए भगवान के साथ भक्त का जो संपर्क है वो तो प्यार का संपर्क है, तो भक्त जब भगवान को प्यार करते हैं तो भगवान भी भक्त को प्यार करते हैं। तो अगर भक्त का कोई भी चीज का कुछ कमी हुआ है तो भगवान उसको सप्लाई कर देते। तो ये इस रूप से भगवान लीला विलास करते हैं और इसके कारण भक्त का हृदय में भगवान का भक्ति का विकास होता है। हमें हर समय ये याद रखना चाहिए कि हम इस्कॉन में क्यों आए हैं, हम यहां क्यों आते हैं। भगवान के साथ हमारा जो संपर्क, वो संपर्क और घनिष्ठ रूप से स्थापन करने के लिए, ये है हमारा मुख्य कर्तव्य। असल काम ये है और बाकी जो है वो आनुषांगिक है, गौण है। और ये भगवान की सेवा में जो कुछ हम लगाते हैं वो भगवान के प्रसाद के रूप में हमारा पास वापस आ जाता है। तो अब बताइए हमको क्या करना चाहिए, अपने लिए खाना पकाना चाहिए या भगवान के लिए खाना पकाना चाहिए? आप लोग तो बोलते हैं, बल्कि आप पकाते हैं खाना? हम माताजी से पूछेंगे खाना किसके लिए पकाना चाहिए। हाँ, अपना लिए, अपने लिए पकाना चाहिए? किसके लिए आप खाना पकाएंगे आज कल से? और ये याद रखना, भगवान क्या खाते हैं, भगवान क्या खाते हैं मालूम है? हाँ, भगवान बोलते हैं पत्रंग पुष्पंग फलम तोयम। पत्रम का मतलब है पत्ता, सब्जी। पुष्प, पत्रंग, पुष्प का मतलब है फूल। फलम फल, और तोयम पानी या दूध। तो भगवान के लिए जब हम खाना पकाते हैं तो साग सब्जी के द्वारा, अनाज के द्वारा, घी और मक्खन के द्वारा खाना पकाना चाहिए। और भगवान के लिए क्या नहीं देना चाहिए, भगवान को भोग में क्या नहीं लगाना चाहिए? हाँ, क्या नहीं लगाना चाहिए? प्याज लहसुन, हाँ बहुत अच्छा, और अंडा, मांस, मछली। हाँ, तो आप बोलिए कल से आप सब भगवान के लिए भोग बनाएंगे? हाँ, कौन कौन भोग बनाएंगे हाथ उठाइए कल से। उसका मतलब और मछली नहीं, मांस नहीं, प्याज नहीं, लहसुन नहीं। ये सब हम फेंक देखते हैं। भगवान जो चाहते हैं उसके, और भगवान के लिए खाना पकाने से हमारा कुछ नुकसान होता है? नहीं, क्या होता है? लाभ होता है, क्योंकि हम भगवान को भौतिक खाना निवेदन करते हैं परंतु उसके फल स्वरूप हमें भगवान का प्रसाद या आध्यात्मिक खाना मिल जाता है। उस आध्यात्मिक खाना प्रसाद खाने से, ग्रहण करने से क्या होता है, अपना पेट का भी ये होता है, भूख संभालता है, और हमारा आत्मा का भी खाना मिल जाता है। हमारा पेट का खाना मिलता है, शरीर का खाना मिलता है, और आत्मा का भी खाना मिल जाता है। हम देखिए आत्मा के लिए हम क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। जो कुछ हम कर रहे हैं अपना शरीर के लिए, अपने इंद्रियां के लिए कर रहे हैं, अपना सुख के लिए कर रहे हैं, परंतु असल में सब कुछ भगवान के लिए करना चाहिए। है ना। तो भगवान के लिए जगह अगर हम करेंगे तो ऐसे हमारा विचार कैसा होगा, हम सब कुछ हम सोचते रहेंगे कैसे हम सब कुछ भगवान को सेवा में लगाएंगे, और ये सोचेंगे कि कैसे भगवान की ये वाणी, भगवान की ये महिमा सारा दुनिया भर हम प्रचार करेंगे। ये जो विचार है ये है भक्ति का साधारण विचार। सब कुछ भगवान को सेवा, भगवान की सेवा में ही अर्पण करना चाहिए, उससे हम इस भौतिक जगत की बंधन से, कर्म का बंधन से मुक्त होकर भगवान के पास वापस लौट जा सकेंगे। हरे कृष्णा, जय श्री प्रभुपाद। कोई प्रश्न है किसी को? ओके।